संध्या काल की बेला में हम आदरणीय दीदी जी का हार्दिक स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। आदरणीय दीदी का भारत में दिल्ली में लौकिक जन्म हुआ। साकार माता पिता से आपने अलौकिक जीवन पाई, जहां हमारी भारतीय संस्कृति संस्कृत का भरपूर उपयोग किया गया, वह देश है जर्मन, जहां आप 16 वर्षों से अपनी सेवाएं प्रदान करती हैं। उससे पहले आपने 25 वर्ष लंदन में भी अपनी सेवाएं प्रदान की हैं। डायरेक्टर यूरोप सेवा केंद्रों का आप कुशल संचालन कर रही हैं। आप एक कुशल वक्ता हैं। आपके व्यक्तित्व में सरलता सौम्यता तो है ही, लेकिन नजरिया बहुत साफ है। कभी भी किसी भी स्थिति में परिस्थिति में आपने उलझना घबराहट कभी फील नहीं की, बल्कि सफलता ही प्राप्त की। नेगेटिविटी आपके पास दूर दूर से भी नहीं है, इसलिए विदेश में रहते स्वदेश वाले भी उनको याद करते हैं। आपका नाम ही है सुदेश दीदी, तो सुदेश दीदी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। दीदी से के लिए कुछ कहना चाहूंगी, अपने अनुभवों से आपने अनेकों की जीवन बनाई है। देश तो क्या, विदेश में भी अनेकों की ज्योति जगाई है। तो अभी आप दीदी से सुनेंगे, ब्राह्मण जीवन में परमात्म शक्तियों का श्रृंगार हम कैसे करें। आदरणीय सुदेश दीदी जी।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। परमात्म शक्तियां कहें, सर्वोत्तम शक्तियां कहें, ईश्वरीय शक्तियां कहें, अनादि शक्ति कहें, अविनाशी शक्ति कहें, इन शक्तियों की प्राप्ति का पहले श्रृंगार से पहले विचार उठता है, अधिकार कहां से मिलता, कहां से शक्तियों का, शक्तियां किनसे मिलती है हमको। महिमा है सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा की, इसलिए ईश्वरीय शक्तियां, परमात्म शक्तियां। परमात्म शक्तियां जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में मिलती हैं, तो अधिकार की प्राप्ति में कोई मेहनत नहीं होती, पर जन्म सिद्ध अधिकार, बाबा हमेशा कहते हैं जन्म सिद्ध अधिकार, इसका मतलब क्या है? जन्म हो तो अधिकार ना, और जन्म कैसे होता है? जन्म परम पिता परमात्मा की संतान बनने से, परंतु जब तक माँ नहीं है तो जन्म कहां से हो? तो धारणा का आधार, ईश्वरीय शक्तियों का श्रृंगार का आधार जन्म है, और जन्म का संबंध माँ से है। ब्रह्मा माँ द्वारा हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बने। माँ जो बच्चे का श्रृंगार करती है ना, बड़ा नेचुरल श्रृंगार माँ द्वारा होता है। तो ये जब रियलाइजेशन हो, निश्चय हो कि मैं ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हूं, द्विज हूं, दोबारा मेरा जन्म हुआ है, और जन्म का अर्थ क्या हुआ? जब तक मृत्यु नहीं है तब तक जन्म नहीं है। तो मर जीवा जन्म का नशा रहे, निश्चय रहे। तो नेचुरली पुराना जो है उससे हम जो बार बार आत्मा अपने श्रृंगार को बिगाड़ देती है वो बिगाड़ेगी नहीं, श्रृंगारी मूर्त रहेगी। तो ईश्वरीय शक्तियां, परमात्म शक्ति, परमपिता परमात्मा को ज्ञान का सागर कहा जाता है, ज्ञान सूर्य भी कहा जाता है। ज्ञान सूर्य पिता परमात्मा की शक्तियां, ज्ञान की शक्ति अज्ञान को समाप्त करती है। जैसे बाबा ने कहा, जब रोशनी है तो अंधेरा नहीं है। और शक्ति का मतलब कोई फाइट करने की बात नहीं, शक्ति कभी युद्ध नहीं करती। शक्ति जिसमें शक्ति है, शक्ति परमात्म शक्ति में युद्ध नहीं है। क्यों? कि स्वाभाविक रीति से जिस प्रकार से लाइट अंधेरे को खत्म करती है, लाइट की शक्ति अंधेरे को खत्म करती है बिना फाइट के। लाइट को कभी अंधेरे से युद्ध करते देखा? दीपक जगा, अंधेरा खत्म हुआ। तो मैं परमात्म संतान अविनाशी दीपक हूं, चैतन्य लाइट हूं, अज्ञान अंधेरे में भटकने वाला नहीं, परंतु दूसरों को भी राह दिखाने वाला चैतन्य दीपक हूं। जैसे कल बाबा ने कितने बारी कितने प्यार से दीपक दीपराज के दीपकों की महिमा की। और ये दीपक जगे तब जगता तब रहता है जब ज्ञान घृत हो। अगर घृत नहीं है, तेल नहीं है, तो दीपक जगे कैसे? तो जगा हुआ दीपक हम सदा जागती ज्योत है। जब ज्ञान की धारणा, श्रृंगार क्या है? धारण कर लेना, अपना गहना बना लेना। श्रृंगार है यानी श्रृंगारित का मतलब है कि अपने जीवन में उतारा हुआ है, पहना हुआ है। खाली गहना है तो गहने को श्रृंगार नहीं कहते, गहने को संपत्ति कहते हैं। गहना है, सोने की वैल्यू है। जब पहन लिया है तब कहेंगे श्रृंगार किया। तो ऐसे बाबा ने हम बच्चों को ज्ञान का धन दिया है, ज्ञान के सागर की, ज्ञान की शक्ति। तो आत्मिक ज्ञान, परम पिता परमात्मा हमको ज्ञान देते हैं अपना और अपनी रचना का। आज भी कहा, और ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, बुजुर्ग भाइयों को, बुजुर्ग बहनों को, माताएं ज्यादा बाबा के सामने बैठी थी उस समय, बुजुर्ग माताएं, और कुछ की जरूरत ही नहीं, बस इतना ही समझ लेना है कि मैं आत्मा हूं। अब ये उसका अभ्यास, यानी जो बाबा ने ज्ञान दिया है उस ज्ञान के अभ्यास से अनुभव होता है। अनुभव से वो अपनी चीज बन जाती है, वो श्रृंगार बन जाता है, यानी वो हमारी अंदर की ब्यूटी है, बाहर की बात नहीं है। श्रृंगार सुंदरता को बढ़ाता है। तो जो हमने सत्य ज्ञान हमको मिला, ये निश्चय है कि ये बात सच है, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा अविनाशी हूँ, मैं चैतन्य हूँ। जैसे चैतन्यता आई तो मैं अजर अमर अविनाशी हूँ, तो सत्यता की शक्ति भय को समाप्त कर देती है। जैसे अंधेरा अज्ञान को विनाश कर देता है, मिटा देता है, तो सत्य ज्ञान असत्य को, झूठ को खत्म कर देता है, निर्भयता आ जाती है। और जहां निर्भयता है, जहां सत्यता है, वहां खुशी है, वहां डर नहीं है किसी बात का, तो ऑटोमेटिकली वो ज्ञान गहना भी है तो वो खुराक भी है। खुशी की खुराक, बाबा ने कहा, खुशी से चेहरा चमकता रहेगा, खुशी सौगात ही यही है, खुश रहो, खुशी बांटते रहो। तो ज्ञान सागर बाबा, ज्ञान सूर्य बाबा की पहली पहली शक्ति हमारे अज्ञान अंधकार को तो मिटाती है, परंतु भ्रम को भी खत्म करती है, भय को खत्म करती है, भ्रम का नाश करती है, अंधश्रद्धा को समाप्त कर देती है। अंधश्रद्धा में भी भय होता है, ये नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा, ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, भक्ति छोड़ देंगे तो पता नहीं कोई श्राप न मिल जावे। तो हम जो भी रिचुअल्स करते आए, भटकते आए भय के कारण, ऐसा नहीं करे ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं करे ऐसा। अब बाबा ने सत्य तरीके से उसका अभ्यास करके धारणा करना सिखा दिया, वो हमारा धन बन गया। इसलिए ज्ञान धन भी है। तो बाप रूप में हमको अधिकार प्राप्त होता है, और शिक्षक रूप में फिर उस अधिकार को, उस ज्ञान को जीवन में उतारना कैसे है। शिक्षक शिक्षा देता है, उसका प्रयोग कैसे करना है। तो रचना का ज्ञान, मैं आत्मा हूँ ये ज्ञान तो मिला, परंतु उसमें रचना के ज्ञान में ड्रामा के आदि मध्य अंश का ज्ञान, तो स्मृति हमारी स्थिति जो है उस आधार पर ही, जब तक हमारा बेस नहीं है तो धारणा किसमें हो, धन की धारणा किसमें हो। आत्मा में धारणा है, परंतु आत्मा में क्या धारणा, कौन सा श्रृंगार है। देवताओं को जो श्रृंगार दिखाते हैं, सब प्रकार के गहने दिखाते हैं, वैसे बहने गहने जो हैं वो बहनों को ज्यादा पहना हुआ, फीमेल्स को पहना हुआ दिखाते हैं, परंतु जितने गहने श्री लक्ष्मी जी को हैं, अगर आप विष्णु रूप को देखें तो उतने गहने, उनसे भी ज्यादा विष्णु जी को गहने पड़े हुए हैं। विष्णु जी के गले का हार अगर आप देखेंगे कितने गहरे हैं। तो हर प्रकार का, यानी 16 श्रृंगार बोलते हैं, श्रृंगार को 16 श्रृंगार कहते हैं। जैसे 16 कला संपूर्ण कहा जाता है, वैसे 16 श्रृंगार कहा जाता है। तो उसमें जितनी भी हमारी वृत्ति दृष्टि व्यवहार विचार संस्कार सब इतना शुद्ध, तो जिस समय गहना गहना है, सोना गहना है सोने का, परंतु सोने का संगम पर जो हमको गुण बाबा सिखाते हैं, मर्यादाएं सिखाते हैं, शिक्षाएं देते हैं, उससे हमारा जीवन हीरे जैसा जीवन बनता है। ब्राह्मण जीवन को हीरे तुल्य जीवन कहा जाता है। ज्ञान ने सच्चाई सिखाई, मैं सत्य स्वरूप आत्मा हूँ, मैं सच्चिदानंद परमात्मा की संतान हूँ, ये स्मृति आधार है। और ये निश्चय और नशा वो उसको श्रृंगार का रूप दे देता है। और जैसे हीरे को बेस चाहिए ना, हीरा प्लास्टिक पर अच्छा लगेगा फिट किया हुआ, लोहे पर हीरे का डालो, लोहे का जेवर बना करके हीरा लगाओ अच्छा लगेगा। तो बाबा कलयुग से हमको लोहे से सोना बनाते हैं, पर साथ साथ संगम पर हीरा बनाते हैं। हीरे की चमक न्यारी है, अनोखी चमक है। तो संगम युग का जीवन याद रहे तो सर्व प्रकार का श्रृंगार, उसमें हमारा बोल, हमारी दृष्टि, हमारी स्मृति, हमारे सुनने का तरीका, जो भी होगा वैल्यूबल होगा, व्यर्थ नहीं होगा, समृद्ध होगा, शक्तिशाली होगा, चमकने वाला होगा। तो इसलिए भक्ति मार्ग में सब बातों में कुंडल दिखाते हैं, गले में हार दिखाते हैं, हाथों के कंगन दिखाते हैं, पैरों में श्री कृष्ण को पायजब दिखाते हैं, नहीं तो बहनों को कुमारियों को पहनाते हैं। इसका मतलब है हमारे चलन में, हमारे व्यवहार में वो जो बाबा ने शिक्षाएं दी हैं, वो शिक्षाएं न केवल बुद्धि तक हैं, परंतु शिक्षा जीवन ही शिक्षा संपन्न बन गया, वो सर्व गुण संपन्न ज्ञान गुण बन जाता है। परंतु ज्ञान गुण तब बनता है जब उस ज्ञान का हम अभ्यास करते योग लगाते हैं, ज्ञान को योग में परिवर्तन करते हैं। सोने का जेवर ऐसे नहीं बनता है, सुनार जो है उसको लिक्विड बनाता है शेप देने के लिए, अग्नि पर डाल रखता है। तो ऐसे लगन की अगन श्रृंगार कैसे करे, उसको श्रृंगार कैसे बनावे। तो जो बाबा ने ज्ञान दिया उस ज्ञान को जितना लगन से, लगन में मगन होकर के उसका मंथन करेंगे, मनन भी करें, चिंतन भी करें, मंथन भी करें, उसमें रमन भी करें, मनन चिंतन मंथन रमन, वो रम जाए, जैसे उसके अंदर हमारे अंदर रस उसका आने लगे, तो वो ऑटोमेटिकली हमको मदद देगा, हमारा बुद्धि योग व्यर्थ से निकल जाएगा, युद्ध नहीं करनी पड़ेगी, विजयी बन जाएंगे, समर्थ बन जाएंगे, व्यर्थ खत्म हो जाएगा। तो वो शक्ति है, यानी वो ज्ञान योग जो है, ज्ञान योग बन गया, योग शक्ति कहा जाता है, योग बल कहा जाता है, उससे बुद्धि शुद्ध बनती है। बाबा से रू रिहान करने से हृदय शुद्ध होता है, योग से जो पिछला पाप है वो नाश होता है, क्योंकि श्रृंगार करना है तो अगर समझो कोई बिना नहाए बिना तैयारी किए स्वच्छ अपने शरीर को भी स्वच्छ किए श्रृंगार लगावे, सुंदर लगेगा, अंदर फ्रेशनेस महसूस होगा, फ्रेशनेस नहीं लगेगी। नहा धो करके फिर श्रृंगार करो। तो ये भी बाबा कहते हैं योग से आत्मा स्वच्छ बनती है, साफ होती है, फिर धारणा ठीक होती है, पाप नाश होते हैं, पिछले भस्म हुए, तो योग की शक्ति। इसलिए ज्ञान को योग बनाना पड़े, ज्ञान जो मिला है उस अभ्यास से अनुभव से। अब वैसे मनुष्य आत्मा श्रृंगार करती है तो श्रृंगार बाहर का, चाहे कुंडल लगा दाएं, चाहे श्रृंगार पट्टी डाले, चाहे गहने पहने, बाहर का मुख का श्रृंगार है, परंतु ये अंतर्मुखी स्थिति में शक्ति आ जाती है आत्मा को अंदर ज्ञान को ग्रहण करने की। योग युक्त स्थिति के साथ साथ ये ब्राह्मण शक्ति जो है अंतर्मुखता की शक्ति है। ईश्वरीय शक्तियां अलग हैं, फिर ब्रह्मा द्वारा हम ब्राह्मण बच्चे बनते हैं वो शक्तियां अलग हैं, भक्ति की शक्ति अलग है, देवताओं की शक्ति अलग है। ईश्वरीय शक्तियां जो हैं वो ज्ञान, शांति, आत्मिक स्थिति में स्थित हुए, परमात्मा के साथ योग लगाया, व्यस्त चिंतन समाप्त, मन शुद्ध, शीतल, शांत, एकांत, एकाग्रता, एक रस, स्थिति अचल और अडोल। दिलवाला के मंदिर में बैठे जैसे कि वो तपस्वी मूर्त हैं, हृदय में हीरा चमक रहा है, मस्तक में ज्योति चमक रही है। तो आत्मा का योग बल से शांति की शक्ति, साथ साथ पवित्रता की शक्ति, ईश्वरीय शक्ति ज्ञान की शक्ति है, शांति की शक्ति है। फिर परमपिता परमात्मा में शक्ति सर्वशक्तिवान है। क्या शक्ति देते हैं? जो कोई इंसान कार्य नहीं कर सकता वो परमात्मा करते हैं। बाबा ने कहा मनुष्य आत्माओं में पापों को भस्म करने की शक्ति नहीं है, पतितों को पावन बनाने की शक्ति नहीं है, प्रवृत्ति में रहते हुए विकारों से निवृत्त होकर के रहे, ये इंसान इंसान को शक्ति नहीं दे सकता। कल की मुरली, परसों की मुरली में भी था, एक परम पिता परमात्मा की महिमा है, पतित पावन, पाप कटेश्वर, बंधनों से मुक्त करने वाला मुक्तेश्वर। तो परमात्म शक्ति पवित्रता की शक्ति है। अब उस शक्ति में जब वृत्ति को हम शुद्ध करते हैं तो मनोवृत्ति कहा जाता है। अब उसकी धारणा किस प्रकार हो, बाहर मुखी है तो हमारी शक्ति पवित्रता की शक्ति है, चाहे ज्ञान की शक्ति है, चाहे योग की शक्ति है। अगर बाहर मुखी स्थिति में है तो वो सोने में जैसे कि खोट पड़ता जाता है, मिक्सचर होता चल जाता है बाहर का प्रभाव। इस मुख में आंखें, बाहर से देखा कुछ उसका असर हुआ, कानों से सुना उसका असर हुआ, मुख से बोला उसका फिर चिंतन चला, कुछ खाया जैसा अन्न वैसा मन हो गया। बाहर मुखता में मैला होता है मन, शक्ति खत्म होती है, अथवा उसमें मिक्सचर होते होते जैसे सोने में खोट पड़ता जाता है ऐसे उसकी शक्ति कम होती चली जाती है। परंतु अंतर्मुखी सदा सुखी, अंतर्मुखता में की स्थिति में आत्मा व्यर्थ यूज नहीं करती, व्यर्थ नहीं गंवाती है, इसलिए शक्तिशाली रहती है। ये ब्राह्मण जन्म की शक्ति फिर है, अंतर्मुखी है। देवताओं को अंतर्मुखी होने की जरूरत नहीं है। तो इधर ईश्वरीय शक्ति जितनी जितनी हम पास्ट को पास्ट करके ड्रामा का बाबा ज्ञान देते हैं, तो साक्षी होकर के देखने की शक्ति, बाबा को साथी बनाया और इस ड्रामा को साक्षी होकर के देखा, तो जो हमारी शक्ति क्यों क्या, ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया, क्यों क्या कैसे, किसने कही, कब कही, वो कैकई और मंत्रा का पाठ समाप्त हो जाता है। क्या कही, किसने कही, तो एनर्जी वेस्ट हो रही है। मन व्यर्थ चिंतन में कांप रहा है, अथवा व्यर्थ चिंतन में ईर्ष्या में व्यर्थ चल रहा है, तो शक्ति नहीं मिली, राज्य करने की शक्ति दूर हो गई। मंत्र और क्या कही के प्रभाव में आने से राम को राज मिलते मिलते 14 साल दूर हो गया। राज तो मिला, रावण से युद्ध करना पड़ा, विजय पाके फिर राज। तो बाबा ने कहा सम्रथ बनो, योद्धा नहीं बनो, युद्ध नहीं करो, योगी बनो। तो हम आत्माएं जब शांत अंतर्मुखता की स्थिति से उसी ज्ञान के गुणों का श्रृंगार कर लेते हैं, क्योंकि जब किसी भी प्रकार का गुस्सा अगर आता है तो चेहरा कैसे लगता है, दृष्टि में वृत्ति में अगर कोई अपवित्रता आती है तो उस समय का रूप कैसा होता है, गुलामी का। लोभ आ गया, भिखारी कंगाली का, क्या कैसा रूप लगेगा भिखारी का। तो किसी भी प्रकार की मनुष्यात्मा से प्राप्ति ना पवित्रता की प्राप्ति है, ना स्नेह और सम्मान की प्राप्ति है। तो परमात्म प्राप्ति हमको सम्मान की शक्ति देता है। बाबा हमको ईश्वरीय शक्ति देकर के, मैं किसकी संतान हूँ, सर्वशक्तिवान की संतान हूँ, शिव शक्ति हूँ, पांडव हूँ, परमात्मा का साथी हूँ, स्थापना में मददगार हूँ, नई दुनिया की स्थापना करने वाला हूँ। जैसे आज बाबा ने कहा तुम कारीगर हो, हम नई दुनिया की स्थापना में ईश्वरीय मददगार हैं। तो स्थापना की शक्ति हमारे पास है, फिर योग से भी कर्मों को विनाश करने की शक्ति भी है, फिर लक्ष्य को सामने रखने के लिए श्रेष्ठ कर्म की शक्ति भी है। क्योंकि परमात्मा की शक्ति तीनों शक्तियां सत्य त्रिमूर्ति शिव सर्वशक्तिमान की शक्ति की प्रत्यक्षता तीन देवताओं द्वारा बाबा दिखाते हैं। तो ये निश्चय से रहे मैं सिर्फ शिव की संतान नहीं, सत्य त्रिमूर्ति शिव की संतान हूँ, ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हूँ, राजयोगी हूँ, और लक्ष्य मेरा नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनने का है। तो लक्षणों की मूर्ति बन जाएंगे। ये धारणा की शक्ति ज्ञान धन भी हो गया, और साथ साथ सतगुरु के साथ अगर संबंध है, तीन प्रकार से आधार जो है ना, तीनों संबंध तीनों स्वरूप। सतगुरु से फिर वरदान रूप में हमको शक्ति मिलती है, वरदान में फिर मेहनत नहीं करनी पड़ती, युद्ध नहीं करना पड़ता, समझ आ गई, फिर सिचुएशन या परिस्थिति आई तो शक्ति व्यर्थ नहीं यूज होती, शक्ति खत्म नहीं होती है, परंतु विजयी रतन बन जाते हैं। तो तीनों संबंध में ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हूं तो वो मेरा स्वाभाविक संस्कार है, वो मेरा नेचुरल संस्कार है, मेहनत नहीं करनी पड़ती। जैसे मछली को तैरने की मेहनत नहीं करनी पड़ती, शेर के बच्चे को शक्तिशाली बनने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो स्वाभाविक है, पैतृक संपत्ति है, अधिकार भी है, पर इनहेरेंट संस्कार है। कहा जाता है इनहेरेंट पर्सनालिटी एंड इनहेरिटेंस, वो रियलिटी है लाइफ की, अधिकार है, जन्म सिद्ध अधिकार है, स्वाभाविक संस्कार है, आत्मिक स्थिति में स्थित होने की शक्ति। परंतु उसका आनंद जो है वो अभ्यास से, वो हमारा विचार पर संस्कार बन गया, तो संस्कार ही संस्कार में जब वो आ गया ना तो श्रृंगार हो गया। और संस्कार में आने के लिए जरूर विचार तक की बात नहीं, समझ तक की बात नहीं, वो व्यवहार में आए, और व्यवहार में आने के लिए जरूर दूसरों के साथ संबंध चाहिए, कैसे गुणों की प्रत्यक्षता हो। इसीलिए विष्णु जो हमारे सामने लक्ष्य बाबा ने दिया है, जो आनंद की शक्ति, जो एकता की शक्ति, जो गुणों की शक्ति, जिससे हम स्वराज्य स्थापन करते हैं, राज करने की शक्ति, कर्म इंद्रियों पर राज करने की शक्ति, ये ब्राह्मणों को इस समय मिलती है। इसीलिए जब ज्ञान मिला है तो स्वदर्शन चक्र, तो ज्ञान के दर्पण में अपना दर्शन, आत्मदर्शन, स्वदर्शन। तो ब्राह्मण दर्शन, ब्राह्मण जीवन का दर्शन, देवताई जीवन का दर्शन, ईश्वरीय संतान होने का दर्शन, तो भिन्न भिन्न शक्तियां, जब दिव्यता देवता स्वरूप है तो नेचुरल स्वाभाविक रीति से वो शक्तियां हैं। ज्ञान के अभ्यास की बात नहीं, वो जो हमने इस समय अभ्यास किया वो देवताओं की शक्ति ऑटोमेटिकली, जैसे फूल की शक्ति खुशबू है, मेहनत नहीं करनी पड़ती, फूल को ऑटोमेटिकली खुशबू देता है। पानी की शक्ति ठंडक है, ऑटोमेटिकली एटमॉस्फेयर फैलाता है। वो शक्ति भी है तो प्रॉपर्टी भी है, संपत्ति भी है। इसलिए परमात्मा को संपत्तिवान, सर्वशक्तिवान, सर्व खजानों का मालिक कहा जाता है। तो सेल्फ रियलाइजेशन से जितना जितना हम ये लक्ष्य सामने रखते हैं तो वही हमारा श्रृंगार बन जाता है, क्योंकि संस्कार व्यवहार में आ गया। ज्ञान की गदा से शक्ति ने माया पर जीत पा ली, फिर दूसरों के साथ व्यवहार में रहते हुए हम न्यारे रहे, हमारी सुंदरता, हमारी खुशी गुम ना हो गई, वो तो हमारी अपनी चीज है ना। जैसे कल बाबा ने कहा कि खुशी हमारा श्रृंगार है, प्रसन्न चित्त, प्रसन्नता, देवताओं का चेहरा खिला हुआ रहता है, फूल की तरह खिला हुआ है, हर्षित मुख, हर्षित चित्त। तो खिले हुए फूल को खुशी वाला फूल कहते हैं, सुंदर फूल कहते हैं। आनंद का सागर बाबा है, इसलिए सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं। सत्यता सुंदरता है, कल्याणकारी भाव ये सुंदरता है। तो ये ईश्वरीय शक्ति है। बाबा को श्रृंगार करने की जरूरत नहीं, पर हमको ये श्रृंगार संस्कार रूप में बन जाता है। संस्कार को बना लेना ही श्रृंगार कर लेना है, वो श्रृंगार फिर बिगड़े नहीं। इसलिए ज्ञान को, ड्रामा के ज्ञान को ये समझ करके कि हम, हमारा लक्ष्य कितना ऊंचा है, हम सो, क्योंकि सामने दर्पण रखेंगे ना, श्रृंगार करते हैं तो अपने रिफ्लेक्शन को देखते हैं ना, सुधार हो गए। श्रृंगार में धारणा तब है, शक्तियों की धारणा तब है जब परिवर्तन दिखाई पड़े। तो परिवर्तन कैसे आता है, जितने भी हमारे जो अवगुण थे वो गुण में बदलते चले गए। गुण अवगुण बन गए थे, जैसे बाबा ने कहा याद करो तुम ही तो देवता थे, ये याद रखेंगे ऐसा ऐसा मैं था, फिर से मुझे ऐसा बनना है। तो वो स्वदर्शन सामने, दर्पण सामने रखा, तो श्री लक्ष्मी श्री नारायण दर्पण है, हमारा भविष्य हमारे लिए दर्पण है। तो बाबा कहा करते थे लक्ष्मी नारायण के चित्र के सामने बैठो बच्ची, अमृत वेले के अर्ली 67-68 में बाबा ने साकार बाबा की मुरलियों में बाबा कहते थे लक्ष्मी नारायण के चित्र के सामने बैठ जाओ। हमारे पास जयपुर में म्यूजियम था, तो बहुत सुंदर लक्ष्मी नारायण का चित्र बना हुआ था। तो बाबा ने लिखा, वो बड़ा मिरर तो सामने है ना, उस समय हमारे पास आज की तरह ट्रांसलाइट का चित्र ब्रह्मा बाबा वाला तो था ही नहीं, अभी तो लाइफ साइज मिरर हमारे पास ब्रह्मा बाबा है। तब हमारे पास ट्रांसलाइट का चित्र श्री लक्ष्मी नारायण का था, तो बाबा कहते थे बच्ची अमृत वेले लक्ष्मी नारायण के चित्र के सामने बैठ जाओ और अपना श्रृंगार करो, देखो उनके ऑर्गन से उनकी जो अंग हैं, दृष्टि है, उनकी मुस्कुराहट है, उनका श्रृंगार है, वो मेरा श्रृंगार है। जैसे दर्पण में देखते हैं तो श्रृंगार करते रहते हैं। अब वो तब जब हम देह भान को समर्पण करें, अभिमान को समाप्त करके आत्मिक स्थिति में स्थित होंगे तो आत्मा को एक श्रृंगार करना है ना, और लक्ष्य सामने रखना है कैसा श्रृंगार करना है, तो ऑटोमेटिकली वो जैसे कमल के फूल कीचड़ में रह करके उसका स्वाभाविक रीति उससे न्यारा है। कमल लोटस के फूल का स्वाभाविक है कि कांटे होते हुए भी कांटों से उसको हर्ट नहीं होता, कांटे चुभते, फूल को कांटे नहीं चुभते हैं उसी डाली पर। तो आत्मशक्ति है न्यारा रहने की और साथ साथ सुगंध ईश्वरीय सुगंधित रूहानियत की सुगंध में वातावरण को ठीक करने की ये शक्ति है। जैसे ठंडी हवा गर्मी को बदल देती है, खुशबू बदबू को चेंज कर देती है, धूप ठंडक को खत्म कर देती है, परिवर्तन आ गया, परिवर्तन की शक्ति। तो परमात्म शक्ति क्या है? परिवर्तन की शक्ति। तो विश्व परिवर्तन तब होगा जब हम स्वयं परिवर्तित होंगे। और पहला परिवर्तन देह अभिमान से आत्माभिमानी, बाहर मुखता से अंतर्मुखी। विस्तार में जाने के बजाय समेटने की शक्ति, सार में स्थित रहने की शक्ति। तो ये शक्तियां जो ब्राह्मण शक्तियां हैं, ईश्वरीय शक्तियों से ब्राह्मण शक्तियां मिलती हैं। देवताओं को सहन करने की शक्ति की जरूरत नहीं, सामना करने की शक्ति की जरूरत नहीं, किसी भी प्रकार की जो ये अष्ट शक्तियां हैं, समेटने की शक्ति, समाने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, देवताओं को जरूरत नहीं, ये ब्राह्मणों की शक्ति है। तो इस समय जब तक ईश्वरीय शक्तियां नहीं आई, ज्ञान को हमने योग से गुण नहीं बनाया, उस गुण की शक्ति से दूसरों के विकार को जीतने की शक्ति आती है। मिसाल के तौर पर हमारे में धैर्यता है, दूसरे के गुस्से को धीरज और शांति से समाप्त कर लेंगे। अधीरता होगी, गुस्से से गुस्सा आ जाएगा। आग को पानी से बुझाते हैं, आग को आग से नहीं बुझाते। तो जो ईश्वरीय शक्ति है वो परिवर्तन करने की शक्ति है, नॉन वायलेंस से, अहिंसा से। मनुष्य आत्मा में शक्ति हिंसा की शक्ति है, उससे परिवर्तन करते हैं। हमारे पास कंस्ट्रक्शन की शक्ति है, स्थापना की शक्ति है। तो उससे जितनी जितनी हमारी कर्म इंद्रियां शुद्ध होती चली जाती है, कर्म करते कर्म इंद्रियां शीतल और शांत होती है। इसलिए लक्ष्य बड़ा ऊंचा, लक्षणों की मूर्ति। तो ईश्वरीय शक्तियां ज्ञान की शक्ति, शांति की शक्ति, पवित्रता की शक्ति। उस शक्ति से ऑटोमेटिकली स्वमान में हम टिकते हैं, मान मांगने की जरूरत नहीं, सबके हृदय में सम्मान पैदा होता है। पवित्रता के बिना देवता बनेंगे नहीं। पढ़ाई पढ़ करके फिर देवताओं में भी सर्वशक्ति संपन्न बने, तो बाबा ने आज कहा इस सतयुग में तो सब आ जाएंगे, परंतु शक्ति किस आधार पर है? स्टेटस के आधार पर है। तो वो कोई बाहर की स्टेटस शक्ति नहीं, पद जो है उसमें अथॉरिटी है, उसमें शक्ति है, यानी आत्मा की स्टेज जो है वो पावरफुल बनती है। तो सब देवताएं परंतु जितनी जितनी पवित्रता की शक्ति है उतने उतने हम अधिकारी बनते हैं, गुलाम नहीं बनते। किसी भी प्रकार की अपवित्रता अस्वच्छता हमको गुलाम बनाती है, अधीन बना देती है। पवित्रता की शक्ति स्वराज्य की शक्ति है। स्वराज अधिकारी विश्व अधिकारी है। तो स्वराज कर्म इंद्रियों पर राज न, ईश्वरीय शक्ति स्वराज्य शक्ति है। राज योगी बनने की शक्ति है, राज ऋषि बनने की शक्ति है। तो ये अपने टाइटल जो बाबा ने हम बच्चों को दिए हैं, रॉयल्टी भी है तो प्योरिटी भी है, संन्यास भी है तो रॉयल्टी राजाई भी है, ऋषि में पवित्रता भी है, बेहद का वैराग भी है। उस वैराग वृत्ति से ऑटोमेटिकली जैसे बाबा ने कहा तुम सेवा कर सकते हो, सुख दूसरों को दे सकते हो। जब तक वैराग वृत्ति नहीं है उपकार नहीं कर सकते। तो हम बच्चों को बाबा जितनी जितनी से सत्यता पवित्रता वो ही हमारी रियलिटी है, वो ही हमारी रॉयल्टी है। ये ईश्वरीय शक्ति है, ब्राह्मण शक्ति है। जो बोलेंगे वो कल्याणकारी वचन होंगे, वरदान बन जाएंगे। यानी जो भी बोले वो सत्य वचन है, सत्यता की शक्ति वचन में भी है, व्यवहार में भी है, संबंध में भी है, संपर्क में भी है। जितना जितना हम इस समय पुरुषार्थ करके पढ़ाई पढ़ करके उसको शक्ति बनाएंगे, नॉलेज लाइट है, नॉलेज लाइट है, व्यवहार में आ गई वो माइट बन गई, उस पढ़ाई से वो शक्ति बन गई ना, समझ आ गई ना। पढ़ाई को किताब में रखी है वो शक्ति नहीं है, केस लिखा हुआ है, वकील को पढ़ करके जज को पढ़ करके अथॉरिटी से राइट और रॉन्ग को निर्णय देता है। तो ऐसे हम अभ्यास बाबा ने कहा पढ़ाई पढ़ करके तुम शक्तिशाली बनते हो, पद उसी अनुसार मिलता है। तो वो शक्ति सारा कल्प चलती है। फिर देवता तो सब बनेंगे, राजाएं तो सब बनेंगे, परंतु सब राजाएं सतयुग के राजाएं नहीं बनते, सब तो प्रधान नहीं बनते, तो स्टेटस नहीं मिला, भले देवता बन गए, पूजनीय मूरत सब नहीं बनते, वर्शिप वर्दी सब नहीं बनते। पढ़ाई को जो कमाई नहीं की उसको सत्य रूप में अपने जीवन में अगर सब अभ्यास करके नहीं उतारा तो शक्ति नहीं बनी। मिसाल के तौर पर देवता तो सब बनते हैं, सब सब सभी मनुष्य देवता बनेंगे, शक्ति तो ज्ञान में है, योग में है, पर हम श्रृंगार करके वो सद्गुण जब धारण कर लिए तो ऐसे हुआ जैसे कि उसमें स्ट्रेंथ आ गई आत्मा में। उसका कनेक्शन सारे कल्प से है। मिसाल के तौर पर अभी कपड़ा है, एक सिर्फ मलमल का कपड़ा है, कॉटन का कपड़ा है, उसका हमने कर्टन बनाया। दूसरा वेलवेट का कपड़ा है, शनील का कपड़ा है, उसका भी हमने कर्टन बनाया, पर्दा बनाया। ये प्लास्टिक की साड़ी अथवा कॉटन की साड़ी का पर्दा बनाया, कुछ धुलाई के बाद खराब हो जाएगा, मैला हो जाएगा, बहुत साल नहीं चलेगा। शनील का कर्टन कितने साल चलेगा, मैल से रेजिस्टेंस है उसको, जल्दी मैला नहीं होगा। काम तो वही किया, कपड़े ने पर्दा बना, पर्दे का काम दिया, परंतु उसको बहुत साल लगे कमजोर होने में, यानी मैला होने में, फटने में। ऐसे देवता तो सब बन गए, मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई है, परंतु जिसने अपने जीवन में उतार लिया वो उसकी शक्ति अथवा श्रृंगार उसका वेल्थ बन गई ना, उसकी प्रॉपर्टी बन गई। आधार पर फिर सतयुग में भी हम पूजनीय मूर्त दिव्य स्वरूप हैं, शक्ति स्वरूप हैं, और द्वापर कलयुग में भी जल्दी प्रभाव में नहीं आते वो शक्ति, फिर सर्वशक्तिवान सारे साइकिल में शक्ति काम करती है। इसलिए सर्वगुण संपन्न, सोलह कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक, यह देवताओं का श्रृंगार। अब उसमें वो इतनी आत्मिक बल है आत्मा में जो भरा, उनकी मूर्ति से भी मनुष्यों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। चैतन्य चित्र भी शक्ति दे रहा है, किस आधार पर? चरित्र से। तो चरित्र ही श्रृंगार है। चित्र में चरित्र जब तक नहीं है तब तक श्रृंगार नहीं है। चित्र है, मूर्ति है, पर श्रृंगार किया जाता है। तो इसी जीवन में जो बाबा आत्मा विचित्र आत्मा है, इस चित्र में रह करके चरित्र बना लेती है, श्रृंगार बन जाता है। ब्यूटी कोई हैंडसम इज वन, ब्यूटीफुल कौन है? जिसके कर्म श्रेष्ठ है। तो हम बाबा की, सतगुरु की, श्रीमत की जितनी जितनी पालना करते जाते हैं, श्रीमत की धारणा शक्ति देती है। श्रीमत की पालना हमारी पालना करती है, हमको स्ट्रेंथ देती है। श्रीमत सतगुरु का वरदान मेहनत नहीं कराता, श्रृंगार ऑटोमेटिकली हो जाता है। इसलिए सत्य त्रिमूर्ति शिव के साथ जब हमारा संबंध जुड़ता है, सर्व संबंध का रस लेना, तो पिता रूप से अधिकार है, टीचर रूप से शिक्षा है, ताकि बुद्धि में समझ आ जावे अच्छी तरीके से। सतगुरु की श्रीमत से हमारा विचार के साथ साथ फिर व्यवहार बदल जाता है, संस्कार श्रेष्ठ बन जाता है, उस संस्कार से चरित्र दिखाई पड़ता है। तो देवताओं का चित्र और चरित्र श्रृंगारा हुआ, इसलिए परंतु वो श्रृंगार की शक्ति संघार की शक्ति भी है, यानी जितने जितने गुण हैं अवगुणों का नाश करने वाली, निर्विकारी विकारों को भस्म करने वाली शक्ति। इसलिए निराकारी, निर्विकारी और ब्यूटी क्या है? निरहंकारी स्वरूप। बाबा का लास्ट मंत्र है निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। तो जितना जितना कोई हम्बल होता है, कहता बड़ा सुंदर है, व्यवहार सुंदर है, बोल सुंदर है, मुस्कुराहट सुंदर है, प्राप्ति श्रेष्ठ है, वो श्रेष्ठता ही सुंदरता है ना। इसलिए हमारा श्रृंगार सर्व गुण संपन्न, चढ़ती कला हमारी, लाइट बढ़ती चली जावे, आत्मा का दीपक सदा जगा रहे, तो उसमें जितना जितना निरंकारी लेट गो समर्पण हो गया, दीवा जगता है, मोमबत्ती जगती है, उसकी मोम पिंगलती जाती है तो लाइट देते हैं, देह भान पिंगलता जाता है, निकलता जाता है, अशरीरी बनते जाते हैं। तो अशरीरी बनते जाते हैं, श्रृंगार बढ़ता जाता है, सुंदरता आती जाती है। देह भान आया, मिट्टी चढ़ती गई, श्रृंगार बिगड़ता गया। तो अभ्यास क्या है? आत्मिक स्थिति में स्थित रहे, फिर संबंध परमात्मा के साथ सर्व संबंध, पिता है अधिकार लेना है, माँ है प्यार और श्रृंगार लेना है, टीचर है श्रृंगार करना सीखना है, सतगुरु है जीवन में व्यवहार में ला करके वरदान लेना और वरदान देना है, खुश रहना है, खुशी देनी है। कल बाबा ने कहा ना, यही सौगात है, खुश रहो खुशी दो। तो खुशी हमारा श्रृंगार है ना, खुशी खत्म हुई चेहरा उदास हो गया, श्रृंगार बिगड़ गया। आत्मिक स्थिति में है, चमक रहा है दीपक, सितारा चमक रहा है, देवभान में आए मिट्टी में मैले हो गए, लाइट का ड्रेस पहनी हुई है चमक रहे हैं, मिट्टी वाली ड्रेस पहनी है मैले हो गए, श्रृंगार बिगड़ गया। तो अटेंशन अपने पर, कनेक्शन भी है, रियलाइजेशन भी है और रिलेशनशिप भी है। तो रियलाइजेशन से, सेल्फ रियलाइजेशन से क्या मैं था और क्या मुझे बनना है, कौन मैं हूँ और किसकी संतान हूँ, क्या बाबा को देना समर्पण करना है और क्या लेना है, ये रियलाइजेशन, परिवर्तन, रियलाइजेशन से परिवर्तन है। रिलेशन से प्राप्ति है, ट्रांसफॉर्मेशन से अपनी सेवा भी है, दूसरे की सेवा भी है। तो नेचुरली न केवल वो ब्यूटी खुद का एंजॉय करेंगे, पर देवताओं के दर्शन दे के नैन, भगत के नैन ठंडे हो जाते हैं, शीतल हो जाते हैं, परमात्मा का दर्शन के लिए अखियां प्यासी रहती हैं, दूसरों को भी सुख देते हैं। तो वो श्रृंगार सिर्फ हम एंजॉय नहीं करते परंतु भगत भी एंजॉय करते, तो ऐसा बाबा हमको श्रृंगारी मूर्त बना रहे हैं। ओम शांति। समय होता है तो श्रृंगार श्रृंगार भी करने वाला हो, देवियों के हाथ में आप देखेंगे ना, देवताओं के हाथ में श्रृंगार और संघार, अष्ट शक्ति या दुर्गा की शक्ति, तो चार अलंकार श्रृंगार वाले हैं, वरदान वाले हैं, बड़े जेंटल हैं। चार अलंकार संघार करने वाले हैं, तलवार, सुदर्शन चक्र, त्रिशूल और बाण, ये संघार करने वाले हैं और बाकी श्रृंगार करने वाले हैं। तो अब इस पर आप विचार करना। और फिर जब हम सचमुच श्रृंगारी मूर्त बन जाते हैं, हथियार हाथ में नहीं रहते। श्री लक्ष्मी जी को कोई हथियार है हाथ में? कोई हथियार नहीं है, श्रृंगार भी कोई नहीं है। वो हम स्वरूप बन गए, लक्षणों की मूर्ति बन गए, श्री लक्ष्मी नारायण दस बसे बन गए, तो कोई स्वाभाविक रूप से जीवन पवित्र श्रेष्ठ बन गया, यही हमारा श्रृंगार है। इसलिए पवित्र बने, योगी बने, यही तरीका है शक्तियों को धारण करने का। ओम शांति। योग करेंगे ना अभी?
आदरणीय दीदी का बहुत बहुत थैंक्स, जो कि उन्होंने स्पष्ट किया कि ब्राह्मण जीवन में परमात्म शक्तियों को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। स्व को पहचानेंगे तो परमात्म शक्तियां भी हमारे पास आ जाएंगी। और अभी हम सब बहुत अच्छे से योग करेंगे, दादी जी हमारे बीच होंगे, चलते चलते, क्योंकि अब हमको वापस जहां से आए हैं घर जाना है, तो दादी जी जब आएंगे तो उन्होंने अच्छे से एनर्जी लेंगे और अपने जीवन में भरेंगे। तो सभी अभी योग करेंगे।
बाबा।